अब मैं आपको ले चलता हूं, बाबा के संबंध किसके साथ थे? पहले जमाने के राजाओं और रजवाड़ों के साथ थे। तो आज मैं कुछ ऐसे राजाओं के फोटोग्राफ दिखा रहा हूं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो बाबा के कौन कौन से राजाओं के साथ संबंध थे? उदयपुर के राजा, देखिए उदयपुर के राजा फतेह सिंह हैं जो नाव से नीचे उतर रहे हैं। और बाबा जब रजवाड़ों में जाते थे तो बाबा की ड्रेस कौन सी होती थी? थ्री पीस सूट, ऐसे बाबा ड्रेस पहनते थे, धोती नहीं पहनते थे, धोती कुर्ता जो हम समझते हैं, जैसा देश। तो बाबा की ड्रेस ऐसे कुछ हुआ करती थी जो आपने देखी है। और बाबा का एक आपने भी कहानी सुनी होगी यज्ञ में, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, चित्र के रूप में दिखाया गया है कि बाबा जब उदयपुर में थे तो वहां के राज दरबार हॉल्ट की गई थी, क्योंकि बाबा की युगल जसोदा जो है नाथद्वारे चली गई थी, तो उनके लिए पूरी राज दरबार को रुकाई गई थी। आप समझ सकते हैं कि बाबा का स्टेटस क्या था। बाबा ज्वेलर्स थे, लेकिन बाबा कभी भी वहां सेल्समैन के तौर पे नहीं जाते थे, बाबा इनविटेशन पे जाते थे। और वहां का राजा, अब मैं उस राजा का फोटोग्राफ दिखा रहा हूं जो बाबा को अपना मित्र मानता था और कहता था कि दादाजी कभी भी आप यहां से जाते हो ना सिंध, तो आप उदयपुर से होकर जाओ, आपको देखता हूं तो मुझे बहुत शांति मिलती है। और ये रहा राजा भूपाल सिंह का फोटो। ये फोटोग्राफ मैंने निकाले हैं कुछ डिटेल्स के बाद। इसकी एक प्रॉब्लम थी कि ये थोड़ा सा हैंडीकेप था, उसको उठने में बहुत समस्या थी। और बाबा से कहता था कि जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे बहुत शांति मिलती है, मेरे पास पैसा है, धन है, लेकिन मेरे अंदर लाइफ के अंदर वो खुशी नहीं है। अज्ञान काल के अंदर भी सोचिए बाबा की क्या पर्सनैलिटी थी, अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता में लोग जो है 3 साल रुकते थे, 3 साल के बाद कराची जाते थे या हैदराबाद जाते थे पहले के जमाने में। अब ये देखिए फोटोग्राफ आपके सामने है, नेपाल के कुछ राजाएं, दरभंगा के जो राजा थे वो सोमेश्वर सिंह, या नेपाल के जो है महेंद्र सिंह, या जंग बहादुर जो उसके मंत्री हुआ करते थे वो भी बाबा के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और बाबा तभी, देखिए ये फोटोग्राफ 50s के दशक में, ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ नहीं है, चित्र है। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और जो राजा के जो है बताते हैं उसके पोते की शादी हो रही है, और यहां पूरे जो है रॉयल बॉडीगार्ड्स इर्द गिर्द मौजूद हैं। ऐसे वीडियोज भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बाबा का फोटो नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आपको काठमांडू से वहां जाना हो, नेपाल जाना हो, तो पहले लोग क्या यूज करते थे, क्या है, पालकी। और बाबा जब आते थे तो बाबा के सत्कार में बताते हैं 8 पालकी बेयरर्स होते थे, 4 नहीं 8, जो वही ट्रीटमेंट जो रानी को मिलता था। तो बाबा का वो रॉयल फैमिलीज में स्टेटस था। इसका थोड़ा सा आपको अंदाजा दिलाने के लिए मैंने दिखाया है। ये क्या है, पशुपतिनाथ, जिसको बाबा मुरलियों में बार बार याद करते हैं, है ना। तो काठमांडू से होते हुए बाबा जो है यहां पे जाते थे, तो मैं आपको कुछ देर के लिए कहां ले गया था, नेपाल के उन राजघरानाओं में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा कि बाबा ने याद किया था माधव बाग को। जानते हैं माधव बाग कहां पर है? बॉम्बे में माधव बाग है, गिरगांव चौपाटी के पास, जहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और बाबा ने अपना अनुभव सुनाया है कि अज्ञान काल में बाबा इस मंदिर में बैठकर माला फेरते थे। चलिए मैं दिखाता हूं, यह है मुंबई का माधव बाग टेम्पल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये रहा। यहां पे अज्ञान काल में बाबा माला फेरते थे, क्योंकि बाबा नारायण के भक्त थे। तो बाबा ने कुछ दिन पहले इसी हफ्ते में जो है माधव बाग को याद किया था, बहुत कम लोग जानते हैं। यह है मुरलियों में आने वाले, यह मुरलियों में आने वाली कुछ अनोखी बातें। आगे बढ़ते हैं। बाबा एक मंदिर को बार बार याद करते हैं, मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, क्या नाम है, आप में से किसने किसने देखा है बबुलनाथ को? हाँ, ये जो बताते हैं मलाबार हिल्स के पास में ही है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं बबुलनाथ मंदिर के अंदर। इसे लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं, सीढ़ियां थोड़ी सी हैं, और ये अंदर का दृश्य। बाबा मुरलियों में बार बार इसको याद करते हैं। और आपको शायद याद रहे कि बाबा को सबसे पहला साक्षात्कार कहां हुआ था मालूम है, बॉम्बे में, और बबुलनाथ मंदिर के सामने। मैं आज आपको उस बिल्डिंग का फोटो दिखा रहा हूं जहां बाबा को सबसे पहला साक्षात्कार हुआ था, और वो है, यह है वो बिल्डिंग जिसका नाम है सदगुरु सदन। पहले प्रोजेक्टर अभी जस्ट ऑन करेंगे। तो इस बिल्डिंग का नाम सदगुरु सदन है जहां बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ था। इस बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पे, और इस बिल्डिंग का पहले नाम था गंगाराम बिल्डिंग, बाद में जो है इसका नाम सदगुरु सदन पड़ा। इस बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पे उनको जो है साक्षात्कार हुआ था। भले हम वेट करेंगे फॉर टू मिनट्स। दिख रहा है फोटोग्राफ? चलिए मैं दो मिनट एक्टिविटी कराऊं, अगर ऐसा है तो एक्टिविटी कराएं। चालू हो गया? यस। तो यहां सामने आप देख रहे हैं सदगुरु सदन, इसी के फिफ्थ फ्लोर पे बाबा को साक्षात्कार हुआ था। हमने आपके लिए बॉम्बे में यहां पे जाकर फोटोग्राफ निकाले। वहां के भाई गाम देवी की नेहा बहन और वहां के भाइयों ने काफी अच्छा सहयोग दिया। अब बाबा को जैसे साक्षात्कार हुआ तो बाबा को स्पष्ट नहीं हुआ कि हो क्या रहा है, तो बाबा बॉम्बे से कहां चले गए? बनारस। तो अभी मैं आपको कहां ले जा रहा हूं? बनारस। देखिए, बिना टिकट बिना किसी पैसे आप पूरे विश्व भ्रमण कर रहे हैं। तो इस समय आप बनारस में हैं, बनारस के घाट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी आप बनारस पहुंच ही गए हैं, एकदम सीधा आप साक्षात्कार कर रहे हैं। और बनारस में बाबा किसको याद करते हैं मुरलियों में? काशी विश्वनाथ। और काशी विश्वनाथ के साथ बाबा किसी और को भी याद करते हैं, मालूम है? एक और चीज जो मुरली में बार बार याद आती है, और उसका नाम क्या है? काशी करवत। तो काशी करवत अभी पहले जैसा नहीं रह गया है, बिल्कुल एक कमरे की तरह है, अंदर जो है शिवलिंग है। चलिए मैं आपको काशी करवत का दर्शन कराता हूं। एंड वॉइस देखिए, ये रहा कुएं की तरह है। अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है। 25 फीट अंदर शिवलिंग रखा है, इसे भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। पहले यहां तलवार रखा जाता था, करवत रखी जाती थी। चलिए इसका महत्व उनके पुजारियों से ही सुनते हैं, क्या इसका महत्व है, पहले क्या हुआ करता था। ये ग्राउंड से 25 फीट अंदर है, क्योंकि पहले बनारस नगरी नीचे हुआ करती थी।
स्कंद पुराण इसका वर्णन करता है, जैसा भारतवर्ष का 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी प्रकार से काशी में भी 12 ज्योतिर्लिंग का उद्भव। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो काशी में अवस्थित हैं, उसमें इनको भीम शंकर बोलते हैं, भीमेश्वर बोलते हैं, भीमा शंकर बोलते हैं। तो ऐसा भीम शंकर के नाम से ही प्रसिद्धि है। इसी मंदिर को काशी करवत बोलते हैं। करवत शब्द है संस्कृत का शब्द कृकच, कृकच का ही अपभ्रंश शब्द करवत है। करवत माने होता है आरा, लकड़ी काटने का, जैसे आरा है ऐसे ही शब्द।
आवाज सुनाई दे रही है?
काशी मोक्ष नगरी है, ऐसा बहुत से पुराणों में वर्णन आया है कि काशी में मृत्यु होने से पुनर्जन्म नहीं होता है, मोक्ष। पहले के
काशी में लोग शरीर त्यागते थे ताकि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो,
मरने के लिए ही करते वृद्ध हो जाते थे, अपना सभी जिम्मेदारी पूर्ण कर लेते थे, सभी लोग काशी यात्रा करते थे और काशी आकर के इधर में प्राणदान करते थे।
लोग यहाँ पे प्राण दान करते थे, काशी यात्रा करते थे,
करवत से ही प्राण दान करते थे, सिर छेद कराते थे,
करवत से ही प्राण दान करते थे।
प्राण मिलता है सत्यनारायण व्रत कथा से, सत्यनारायण व्रत कथा भी स्कंद पुराण का ही अंग है।
इसका उल्लेख सत्यनारायण की कथा में भी आता है।
पंचम अध्याय में वर्णन आता है कि धार्मिक सत्य संघर्ष साधु मोरजो देहा कचैवा दत्वा मोक्षम। साधु नाम का जो वैश्य वानिया था, उसका पुनर्जन्म हुआ तो मोरध्वज नाम का राजा हुआ। मोरध्वज ने अपने आप को आरे से चीर करके,
ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा?
वो स्थान,
अच्छा ठीक है, मैं उसका अर्थ बताई देता हूँ, कोई बात नहीं, पंडित जी की इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ।
इसीलिए मंदिर को काशी करवत के नाम से
इसमें ये बताया जा रहा है कि बताते हैं कि जब सती प्रथा को बंद किया गया, उसी समय अंग्रेजों के जमाने में इसको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और आपको आश्चर्य होगा कि काशी शब्द का मालूम है संस्कृत में मतलब क्या होता है? काशी का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। और काशी को लोग शिव की नगरी मानते हैं और बाबा को बनारस में साक्षात्कार हुआ था। तो ऐसी संभावना है, मैं कह नहीं रहा हूं कि ऐसा है, ऐसी संभावना है कि हो सकता है परमात्मा शिव की प्रवेशता शायद काशी में ही हुई हो और शायद इसीलिए काशी को शिव की नगरी माना जाता, संभवतः। और काशी में बताते हैं लोग, पुराणों में बताते हैं कि काशी शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है और प्रलय काल में भी इसका विनाश नहीं होता है। खैर, तो ये थे काशी करवट की मैंने आपको एक झलक दिखाई। आगे बढ़ते हैं। ये क्या मालूम है, ये बाबा का वो बंगला है जहां पे बाबा को महाविनाश का साक्षात्कार हुआ था। मैं आपको इस बंगले के फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। बाबा के एक मित्र थे लालचंद खत्री, तो बाबा लालचंद खत्री के यहां पे रुका करते थे। ये पुराने फोटोग्राफ्स हैं, ये 1934 की बात है। 1934 दिख रहा है बंगलो कैसा है, अभी थोड़ी सी कलर्ड फोटो दिखाते हैं। बंगलो बड़ा विशाल है, अभी इतने अच्छे से मेंटेन्ड और वेल मेंटेन स्टेट में नहीं है। चलिए, अब बनारस की तो बात हो गई। बाबा बनारस से कहां पहुंचे, हैदराबाद। और बात है 1936 की। 1936 में आपने सुना होगा यज्ञ हिस्ट्री में बाबा एक महीने के लिए कश्मीर जाते हैं, लेकिन एक महीने के बदले कितने महीने रुकते हैं, 3 महीने। अब यहां चित्र में दिखाया गया कि बाबा पुजारी से पूछ रहे हैं, मालूम है क्या पूछ रहे हैं, कश्मीर में कौन सा मंदिर है, अमरनाथ का मंदिर है, जिसको बाबा बर्फानी भी कहते हैं, अमरनाथ का मंदिर है। तो बाबा पूछ रहे हैं पुजारी से कि शिवलिंग बनता कैसे है। तो पुजारी उसका रहस्य बताता है कि 6 महीने तक बंद रहता है मंदिर, तो वहां से एक एक बूंद पानी टपकती है और वो जम जाती है, उससे शिवलिंग बनता है, कोई अपने आप प्रकट हो जाता है ऐसा नहीं है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए अमरनाथ अलग है और मानसरोवर अलग है। बाबा मुरलियों में कहते हैं मानसरोवर जिसमें स्नान करने से लोग परियां बन जाती हैं। तो ये चित्र आपके सामने है मानसरोवर का। दोनों में क्या अंतर है, पहली बात अमरनाथ और मानसरोवर दोनों 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आते, 12 ज्योतिर्लिंग में उनकी गणना नहीं होती है। अमरनाथ कश्मीर पहलगाम में है और मानसरोवर इंडिया के कंट्रोल में नहीं, किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है, क्योंकि चाइना वॉर के बाद, इंडिया चाइना वॉर के बाद ये वहां पे चला गया। मानसरोवर का मतलब होता है मानस सरोवर, वो सरोवर जो मन से निकला हो। और बताते हैं कि मानसरोवर की रचना ब्रह्मा ने की थी और इसी मानसरोवर के पास ब्रह्मपुत्रा नदी, थोड़ी देर दूर के बाद ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन होता है जो वास्तव में ब्रह्मा और शिव के संबंधों को उजागर करता है। ये मानसरोवर के पास 2 झील है, छोटी छोटी झील, अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी झील है, इसी का नाम मानसरोवर झील है और दूसरे का नाम रक्षा स्थल झील है। 2 ये झील है। बताते हैं कि इस झील में देवी देवता अर्ली मॉर्निंग स्नान करते हैं, इसको लोग बहुत पवित्र मानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मीठी पानी वाली जो है झील, इसे माना जाता है, जिसे हम मानसरोवर झील कहते हैं। तो बाबा जो मुरलियों में बार बार याद करते हैं, बाबा इसी मानसरोवर झील को याद करते हैं। और इस झील के सामने जो दिखाई दे रहा है वह है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में कोई मंदिर नहीं होता, वास्तव में कैलाश पर्वत ही अपने आप में बड़ा शिवलिंग है। और संस्कृत में कैलाश का मतलब होता है स्फटिक, क्रिस्टल। तो भगवान क्या है, क्रिस्टल की तरह क्लियर, मणि की तरह है, तो उसका यादगार ही वास्तव में कैलाश पर्वत है। और लोग कई बार कैलाश को शिव के साथ जोड़ देते हैं। ये सारी चीजों का अलंकारिक अर्थ है, इसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे। तो यह है कैलाश पर्वत जो आपके सामने देख रहे हैं, और उसके ठीक सामने क्या है, मानसरोवर झील। बाबा इसी झील के बारे में कहते हैं कि लोग स्नान करते हैं, समझते हैं कि हम पावन बन जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फिर से कश्मीर से और मानसरोवर से मैं आपको ले चलता हूं हैदराबाद। वो बिल्डिंग, ये उसके बहुत रेयर फोटोग्राफ आपको जल्दी नेट पे मिलेंगे नहीं, उस बिल्डिंग के फोटोग्राफ जहां बाबा ने सबसे पहला हॉस्टल खोला था, उसका नाम क्या था, ओम निवास। और ये रहा आपके सामने ओम निवास का फोटो। फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता था, ब्रह्मा बाबा, बड़ी दीदी, दादी प्रकाशमणि, और किचन की व्यवस्था फर्स्ट ग्राउंड पे फ्लोर पे होती थी। सेकेंड माले पे स्कूल होता था और थर्ड फ्लोर पे लगभग 50 बच्चों के लिए बेड होते थे। इसमें नारायण दादा भी पड़े थे, गुलजार दादी भी पड़ी थी। ऊपर वाले फ्लोर पे 50 बेड्स लगते थे जिसपे व्हाइट चदरें लगती थी और सभी सोते थे और गीत बजता था सोजा राजकुमारी। तो यही वो बिल्डिंग है जिसका नाम है ओम निवास। हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ओम निवास 2 हैं। हैदराबाद का ओम निवास अलग था, कराची का ओम निवास अलग था। इस बिल्डिंग का उद्घाटन 1937 में दीपावली के अवसर पे हुआ था, ऐसे सुनने में आता है। जब भी बाबा कश्मीर में थे तो मम्मा को भी काम सौंपा गया था इसके कंस्ट्रक्शन में अपना इनपुट देने के लिए। मम्मा कितनी यंग थी तभी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मम्मा इसमें बहुत मददगार बनी। और इस बिल्डिंग का नाम ओम निवास क्यों था, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा लाइट का ओम हुआ करता था जो हैदराबाद स्टेशन से दिखाई देता था, इसलिए इसका नाम ओम निवास पड़ा। तो इसके रेयर फोटोग्राफ आप इस समय देख रहे हैं ओम निवास का। तो ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड हुआ तो ये टू स्टोरी बिल्डिंग थी, टॉप मोस्ट फ्लोर पे बच्चों के रहने के लिए बिल्डिंग बनी थी जहां बड़े बड़े कलेक्टर्स के बंगलो हुआ करते थे, वहां ये ओम निवास था। आगे बढ़ते हैं तो ये आपने जो फोटोग्राफ देखे हैं किसके देखे हैं, ओम निवास के, सेकेंड फ्लोर के। और आगे बढ़ते हैं, अभी आपको कौन दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए अभी भी दादी पहुंचे थे। फिर न्यूज़पेपर में छपना चालू हो गया, जब बाबा ने पवित्रता की बात की तो न्यूज कटिंग में आना चालू हो गया। 100 गर्ल्स रिफ्यूज टू मैरी, 5000 फाइट वुमेन्स कल्ट, ये सारे न्यूज़पेपर में बाबा ने बताते ना कि न्यूज़पेपर में सारी खबरें आनी चालू हो गई। और फिर क्या हुआ, पिकेटिंग, ये घटना 7 अगस्त 1938 की घटना है। इसमें देखिए कॉर्नर वाला जो फोटोग्राफ देख रहे हैं यहां पे जहां मैं कर्सर रख रहा हूं, ये दादा चंद्र हास का फोटो है। और ये सब कौन है, हैदराबाद के मुखी लोग, उसमें से एक जो प्रसिद्ध मुखी थे। अच्छा ये देखिए अभी आपको मैं ड्रेस दिखाता हूं, ड्रेस देखना चाहेंगे, ये देखिए ड्रेस, ये ब्लू कलर की ड्रेस है, भले आप ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो देख रहे हैं। और यहां पे क्या लिखा है, ओम, तो ये था ओम निवास। और यहाँ के यूनिफॉर्म में भी देखिए बच्चों के सब यहाँ पे, देखिए ये सब छोटा बच्चा भी यहाँ पे यहाँ पे सब लेट गए हैं। अच्छा ये किसका फोटो है, शायद ही आपने देखा होगा, ये फोटो है एंटी ओम मंडली का प्रेसिडेंट मुखी मंगाराम। और ये फॉरेन रिटर्न था, इलेक्ट्रिक कंपनी का बहुत बड़ा मालिक भी था। और ये पहला व्यक्ति था जिसने अपने बच्चियों को एजुकेशन दिया था, इसके 6 बच्चे थे, 3 बच्चे और 3 बच्चियां। और उसके जो सबसे छोटी वाली बेटी थी जिसका नाम गोपी था, वो भी एंटी ओम मंडली में नारी सभा की प्रेसिडेंट थी। और ये फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं दो कन्याओं को कन्विंस कर रहे हैं, ये जो बुजुर्ग खड़े हैं इनका नाम है ठाकुरदास हासोमल, मनमोहिनी दीदी के दादाजी, मनमोहिनी दीदी के दादाजी ठाकुर हासाराम या हासोमल। ये भी पहले स्टार्टिंग में ओम मंडली में आते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही दीदी के पिताजी का देहांत हुआ तो सारी चीजें चालू हो गई। तो क्या हुआ कि देखिए अब मैं कुछ फोटोग्राफ दिखा रहा हूं एंटी ओम मंडली के फोटोग्राफ्स, ये सभी लोग एंटी ओम मंडली के लोगों के फोटोग्राफ्स हैं जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। हाँ तो मैं बात किसकी बता रहा था, सत्याग्रह की बात बता रहा था। तो जो सेठ हासोमल थे वो बड़े शान से कह रहे थे पिकेटिंग के टाइम, मैंने अपनी बच्चियों को कई दरवाजों और कई तालों के अंदर क्या करके रखा है, बंद करके रखा है। तो दीदी के साथ कौन आता था, दीदी और शील दादी, दीदी मनमोहिनी और शील दादी दोनों आते थे। और देख रहे हैं कि भाषण कर रहे हैं और सामने कौन दिखाई दे रहा है उनको, मनमोहिनी दीदी। तो उनको इतना गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, उनको घर से निकाल दिया। और बाबा ने ओम निवास के पास में ही उनको फ्लैट जो है लेकर दिया था, तब की बात है। और दीदी भी फिर ओम निवास में आ गई, तो तब की घटना है जिसके आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये किसके फोटोग्राफ हैं? ये है गुलाम हुदायत हुसैन जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, और इनका नाम है अल्लाह बख्श सुमरू। अभी आप सोच रहे हैं कि ये फोटोग्राफ में क्यों दिखा रहा हूं, ये कुछ मुस्लिम मिनिस्टर्स थे जिन्होंने ओम मंडली को बहुत सपोर्ट दिया था। इन्होंने सिंध मामला इतना गर्म हो गया था कि मामला सिंध की अदालत में चला, सिंध के पार्लियामेंट में चला गया था, विधानसभा में चला गया था। तब इन्होंने अपने भाषण में कहा था, गुलाम हुसैन ने अपने भाषण में कहा था कि ओम मंडली, एंटी ओम मंडली वाले क्या कर रहे हैं, ओम मंडली पे अत्याचार ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पैगंबर मोहम्मद पैगंबर ने जब धर्म की स्थापना की थी तो मुश्किल से कुछ गिने चुने लोग थे, तो उन्होंने ओम मंडली को सपोर्ट किया था, लेकिन पूरा सिंध अपोज में था। और अल्लाह बख्श सुमरू का रोल क्या आता है, बताते हैं कि इतना विरोध हुआ कि उन्होंने कहा कि ओम मंडली को बैन किया जाए। तो मैं आपको बात बता दूं, कई लोग नेट पे न्यूज पढ़ते होंगे कि ओम मंडली बैन हो गई थी, ऐसा नहीं है, उसे ऑफिशियली बैन किया गया था, लेकिन उस बैन को आज तक कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया था। अगर बैन होता तो आज हम यहां पे दिखाई नहीं देते। तो एक बहुत विचित्र घटना है, इसका जिक्र जो है एक अद्भुत जीवन कहानी में आता है, इस बुक में भी है, दादा चंद्र हास की कहानी में भी आता है, अल्लाह बख्श सुमरू, जो आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं अल्लाह बख्श सुमरू, ये क्या करता है, ये ब्रह्मा बाबा से मिलने आता है, कहता है कि बाबा मेरी मिनिस्ट्री के बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम रेजिग्नेशन देने वाले हैं, आप मेरी पार्टी को बचाइए, आप एक काम कीजिए, आप ये नाम चेंज क्यों नहीं कर देते, क्योंकि सारा मामला किस पे है, नाम के ऊपर है, तो ओम मंडली का आप नाम चेंज क्यों नहीं करते। तो बाबा का उत्तर था, बच्चे ओम मंडली नाम मैंने नहीं दिया, ये तो जनता ने रखा है, हम तो इसका नाम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तब संस्था का नाम चेंज हुआ और आगे चलकर संस्था का नाम क्या हुआ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और मंत्रियों को खुश करने के लिए ऐसे दिखा दिया गया कि ओम मंडली बैंड हो गई है, बट ऐसा हुआ ही नहीं था। तो कई लोगों के पास अधूरा ज्ञान होता है और बहुत सारे लोग क्या क्या कंटेंट और मटेरियल पढ़ते हैं, इसलिए कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो हमें अपने सीनियर से आकर सारी चीजों का जो हम स्पष्टीकरण ले सकते हैं। तो ये अल्लाह बख्श सुमरू का फोटो है, सिंध विधानसभा का फोटो है। अब मैं आपको ले चलता हूं कहां, हैदराबाद से हमारा यज्ञ कहां शिफ्ट हुआ, कराची। तो अब मैं आपको ले चलता हूं कराची, और इस समय आप कराची के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, और ये सोल्जर बाजार जहां पे हमारी ओम मंडली की ऑफिसेज हुआ करती थी, ये पुरानी बिल्डिंग्स वहां का देख रहे हैं। और आपने अगर भाव की अगर आपने चंद्रहास की जीवन कहानी पढ़ी होगी, वो सदर बाजार में जाते थे बहुत सारी सब्जियां लेने के लिए, और कराची शहर तभी कुछ ऐसा दिखता था। चलिए मैं आपको ले चलता हूं कराची में, अगर आप होते तो कराची कैसे दिखाई देता, बिल्कुल एक मुंबई सिटी की तरह है, और इस समय आप कराची में हैं। वॉल्यूम, ट्राम दिख रहा है आपको, पहले के जमाने में ट्राम चलती थी इसलिए आप ट्राम देख रहे हैं, पुराने जमाने की कार। देखिए वहां की बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं कराची में, कराची बंदरगाह। सबके जमाने का कराची, बिल्कुल एक मॉडर्न शहर की तरफ। ऊंट भी यूज किया जाता था उसको ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए आप यज्ञ इतिहास में अगर आपने चीज पढ़ी होगी, ये देखिए ट्राम कैसे चल रही है सड़कों पर। तो सोल्जर बाजार में, और ये सदर बाजार का जो है नजारा है, और दादा चंद्र विश्वरतन दादा क्या करते थे, साइकिल लेते थे, उनका फोटो नहीं है बाय द वे, ये टॉय साइकिल लेते थे और सब्जियां लाने के लिए जाते थे। अब मैं आपको ले चलता हूं, ये तो आप जानते हैं, आपने वीडियो देखे होंगे, ये क्या है, क्लिफ्टन, समुद्र के किनारे का नजारा, और अभी इसका नाम क्या है, बिन कासिम पार्क। देखिए ये गूगल मैप है, यहां पे ये बहुत बड़ा पार्क है जहां से समुद्र का किनारा दिखाई देता है, ये क्लिफ्टन ब्रिज है। चलिए मैं आपको कलर्ड फोटोज दिखाता हूं, ये है पुराने फोटो और ये है कलर्ड फोटो। तो बहुत से लोगों ने हमें कहा कि भाई क्लिफ्टन आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन आप हमें दिखाई नहीं देता कि वहां समुद्र कैसे दिखता है। चलिए तो मैं आपको क्लिफ्टन अभी ले जाने वाला हूं। देखिए दादियां क्या कर रही हैं, यहां पे गाड़ी पार्क है क्योंकि वहां बहुत बड़ा गार्डन था, ये गार्डन देख रहे हैं, और ये बच्चों के फोटोग्राफ गार्डन में ही लिए गए, ये आपने नहीं देखे होंगे। अच्छा अब मैं आपको ले चलता हूं बिन कासिम पार्क लाइव, इस समय आप मेरे साथ चलेंगे कराची बिन कासिम गार्डन जिसे क्लिफ्टन कहते हैं। वॉल्यूम ले रखेंगे थोड़ा सा, अभी आप देख रहे हैं इसे कोठारी परेड कहते हैं, ये देखिए इसका स्काई व्यू आप देख पा रहे हैं, ये है क्लिफ्टन, या ये जो जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, सामने आप देख रहे हैं कोठारी परेड, इसे एक पारसी ने डोनेट किया था म्यूनिसपैलिटी को। ये कोठारी परेड आपके सामने है, और वो जो गुंबद जिसे हम पेविलियन कहते हैं, जहां पे आपने बच्चों के फोटोग्राफ देखे, अब देखिए वहां से आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, समुद्र का किनारा। ये रहा समुद्र का नजारा। तो ये था बिन कासिम पार्क, जिसे हम क्लिफ्टन के नाम से जानते हैं यज्ञ में, उसके मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाए। चलिए अब मैं आपको, आप सोचते होंगे कि हमने केवल आपको एरियल व्यू दिखाया, चलिए मैं आपको बिन कासिम पार्क के अंदर ले चलता हूं, एकदम अंदर। अभी भी वैसे का वैसे ही है, रात को ये और भी खूबसूरत दिखता है। ये रात का नजारा आपके सामने, और ये आपके तब के फोटोग्राफ। ये रहा दूर से देख रहे हैं सर्कल में, तो ये आपने देखा बिन कासिम पार्क। अब मैं आपको ले चलता हूं बहुत ही रेयर वीडियोस, और वो है जो बाबा हमारा यज्ञ जो है बताते हैं शिफ्ट होके कराची आ गया। कराची में ये किसके फोटोग्राफ हैं? ओम निवास, ये दूसरा ओम निवास जो कराची में था, जहां बाबा रहते भी थे। और यहां देख रहे हैं कि दादी जी खड़ी हैं। अब मैं आपको बिल्डिंग के अंदर ले चलता हूं। आज भी वो बिल्डिंग वैसे की वैसे ही है, अब वो एक कॉलेज में कन्वर्ट हो गई है जिसका नाम है बे व्यू कॉलेज। चलिए मैं आपको उस बिल्डिंग के लाइव फोटोग्राफ हैं और उसके वीडियो देखते हैं हाउ इट लुक्स। तो अभी आप कल्पना कीजिए कि आप पहुंच गए हैं। कराची समुद्र के किनारे, और वहां पे क्लिफ्टन, और क्लिफ्टन के पास बे व्यू कॉलेज बिल्डिंग जिसे हम ओम निवास कहते हैं। पहले मैं आपको पूरी वीडियो पहले दिखाते हैं, कोई वो नहीं है क्योंकि मेन वीडियो यही है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे यहां पर, देखिए बिल्डिंग के अंदर के नजारे। ये तो बाहर के हैं, अंदर के हम आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे, वीडियोज हैं ये देखिए लाइव। उसकी बनावट बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, सारे आर्किटेक्चर। अब यहां कॉलेज खुल गया है, जैसे कि तो ये हम थे बेवियू कॉलेज, जो कि पहले अभी ओम निवास के नाम से जाना जाता था, राधा भवन, कुंज निवास या कुंज भवन, जहां मम्मा और बड़ी बहनें रहती थी, उसके ये रेयर फोटोग्राफ्स हैं। इसी के पास जो है एक धोबी घाट भी हुआ करता था, जिसका नाम गुलजार भवन हुआ करता था, जिसका जिक्र दादा विश्व रतन की जीवन कहानी में आता है। 14 वर्ष की तपस्या के एक बहुत रेयर फोटोग्राफ आप देख रहे हैं कि दादियां कैसे तपस्या कर रही हैं। फोटो इतना क्लियर नहीं है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में है। बाबा भवन, जहां बच्चे भी रहते थे, बाबा भी रहते थे। राधा भवन का फोटो ब्लू गेट के अंदर आप देख सकते हैं। बाबा यहां पे भी रहा करते थे, तो जहां बाबा रहते थे उस भवन का फोटो है कराची का। अब हमारा यज्ञ ट्रांसफर कहां हुआ? राजस्थान। अब मैं आपको ले चलता हूं उस बंदरगाह जहां सारे सामान जो है ऊंट से भी लाद के ले जाया गया, तो सारे सामान जो है वहां पहुंचाए जा रहे हैं। ये कराची का जो है फेमस जो है बंदरगाह है, जिसे कि मारी पोर्ट कहते हैं। ये 1950s के फोटोज हैं, ये आपने ऑलरेडी देखे होंगे। ये स्टीमर है जिसका नाम भी सरस्वती था। सारे सामान लादे जा रहे हैं स्टीमर के ऊपर। अब ये कुछ ऐसा दिखता है, आपके फोटोग्राफ। तो इस प्रकार में कुछ आपको ऐसे कुछ फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जो शायद ही आपने देखे होंगे। ये कराची का वो पोर्ट जो अब कैसे दिखता है, उसके नजारे आपके सामने हैं। इसके बाद हमारा यज्ञ शिफ्ट होकर कहां आया? ब्रिज कोठी। आप में से किसने ब्रिज कोठी देखी है, हाथ ऊपर करेंगे। हाँ, अब वो एक होटल में तब्दील हो चुका है जिसका नाम है सनराइज होटल। जैसे ही आप आबू शहर में एंटर होते हैं, तो आपको ज्ञात रहे कि बेगरी पार्ट काफी लंबे टाइम तक चला और 1950 से लेकर 55 तक हम ब्रिज कोठी में रहे। लगभग 200 की आसपास की संख्या थी। ये ब्रिज कोठी के फोटोग्राफ है। आज मैं आपको थोड़ा ब्रिज कोठी के और अंदर ले चलता हूं। तो ब्रिज कोठी हम कितने साल रहे? 5 साल। और इसके बाद 55 से 58 तीन साल कोटा हाउस में, और लास्ट में हम 58 के बाद कहां आ गए? पोखरण हाउस, दैट मीन्स पांडव भवन। तो यहां माउंट आबू आने के बाद हमारा यज्ञ 2 बार शिफ्ट हुआ है। ये पांडव भवन का पुराना गेट आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको ले चलता हूं ब्रिज कोठी। देख रहे हैं फोटोग्राफ ब्रिज कोठी के, और ब्रिज कोठी के और भी हम करीब हैं। चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूं और भी अंदर। अभी तो होटल में तब्दील हो चुका है, पहले जैसा नहीं है जैसे है। ये तो अभी के फोटोग्राफ हैं जो आप देख रहे हैं सामने। और ब्रिज कोठी के पास एक और चीज थी जो बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रिज कोठी कहां पे लोकेटेड थी मालूम है? वहां पे एक शमशान था, तो मैं आपको ले चलता हूं शमशान में। तो देखिए शमशान के अंदर का फोटो है। वहां से शमशान से ब्रिज कोठी कैसे दिखती है, शमशान के अंदर से फोटो लिए गए हैं। देखिए यहां से ब्रिज कोठी कितनी दूर पहाड़ों पे दिखाई देती है। जैसे ही पीछे आप टर्न लेंगे, पीछे क्या दिखाई देगा? शमशान। हमने पुराने दादियों के इंटरव्यूज लिए, तो बता रहे थे कि कई ऐसे बोलते थे, देखो आपने शमशान के उधर घर लिया ना, इसलिए बेगरी पार्ट चालू हो गया, सब भूत प्रेतों का डेरा है। पर बाबा आपने विश्वास में बहुत अडिग थे। तो ये देखिए शमशान के अंदर से फोटोग्राफ लिए गए हैं ब्रिज कोठी के बगल में जो शमशान था, क्योंकि आप तो शमशान में जा नहीं सकते, तो एटलीस्ट कम से कम उसके फोटोग्राफ दिखाए जा सकते हैं। ब्रिज कोठी के को कनेक्टेड एक मेन रोड से कनेक्टेड रोड था जो हर साल खराब हो जाया करता था। तो आपने ये जो फोटोग्राफ देखे हैं, ये ब्रिज कोठी के उस रोड के फोटोग्राफ हैं। ध्यान से देखें तो यहां देखिए ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, और यहां पे कौन खड़ी है? मम्मा खड़ी हैं। और तभी बाबा सबको कहां घुमाने ले जाया करते थे? कहां का फोटो है ये? कोदरा डैम, वहां का फोटोग्राफ है। यहां पे आपको फोटोग्राफ में इतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं कॉर्नर में, और बाबा यहां पे भी ले जाते थे। ये क्या है? क्या है ये? टोड रॉक। ये एक मेढक की आकार का है। नक्की झील आप जाते हैं, जैसे आप नक्की झील जाते हैं तो आपको ये दिखाई देता है। ऐसे लगेगा जैसे कोई मेढक है पानी में अब कूदने वाला है। अच्छा, टोड रॉक के नीचे देखिए, मैं आपको अभी टोड रॉक के नीचे ले जा रहा हूं, और ये फोटोग्राफ, पूरी सेना खड़ी है व्हाइट ड्रेस में और ब्लू यूनिफॉर्म, व्हाइट शर्ट ब्लू शॉर्ट्स, और ये टोड रॉक के नीचे का फोटो है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं। ये हरकिशन दास हॉस्पिटल अभी भी वैसे का वैसा ही है जहां बाबा का बॉम्बे में जो ऑपरेशन हुआ करता था, तो उसमें से ये एक हॉस्पिटल है हरकिशन दास जो अब रिलायंस के अंडर में आता है, उसके भी फोटोग्राफ आपके सामने हैं। यह है बॉम्बे का सबसे प्रसिद्ध हैंगिंग गार्डन। अब इस फोटो में आप देख रहे हैं कि ब्रिज दिखाई दे रहा है ये, और ब्रिज के नीचे देखिए आपको यहां पे पाइप्स दिखाई दे रहे हैं यहां पे, और ये रहा नेक्स्ट फोटो, बाबा इसी ब्रिज पे खड़े हैं। ये बॉम्बे का फोटो है हैंगिंग गार्डन का। पीछे कौन खड़े हैं? भाऊ, पीछे भाऊ खड़े हैं। और आगे बढ़ते हैं, बाबा मुरलियों में बार बार इसको याद करते हैं, क्या है ये? लॉन्ग बूट। ये हैंगिंग गार्डन कमला नेहरू पार्क हैंगिंग गार्डन में ही है, यहां से आप अंदर जा सकते हैं और इसके छत पे आप ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हैं। तो शिव बाबा मुरलियों में बार बार कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि मैं कौन हूं, बाबा का क्या हूं मैं? लॉन्ग बूट हूं। तो ये लॉन्ग बूट उसी हैंगिंग गार्डन में स्थित है। तो इस मुरलियों में इस हैंगिंग गार्डन का भी जिक्र आता है, इस लॉन्ग बूट का भी जिक्र आता है। चलिए देखिए हैंगिंग गार्डन से नजारा कैसे दिख रहा है। हैंगिंग गार्डन के सामने आपको जूह चौपाटी दिखाई देगी, गिरगांव चौपाटी है, नॉट जूह चौपाटी, यहां देख रहे हैं गिरगांव चौपाटी दिखाई दे रही है। अब मैं आपको यहां के भी फोटोग्राफ दिखाता हूं, तब के फोटोग्राफ ब्रह्मा बाबा के, और ये रहे वो फोटोग्राफ। यहां बाबा खड़े हैं, देखिए अब के फोटोग्राफ, तब के फोटोग्राफ। भले पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, अलग एंगल से फोटो खींचा गया है, लेकिन ये यहीं का फोटोग्राफ है हैंगिंग गार्डन का। डॉक्टर ने कहा था कि बाबा मॉर्निंग में जो है गार्डन में टाइम स्पेंड करे, तो रमेश भाई भी उनके साथ जाते थे। और ये यहां से जो आपको बीच दिखाई दे रहा है, यहां ही मरीन ड्राइव है, मैं मरीन ड्राइव के बारे में भी जिक्र करूंगा। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बाबा मुरलियों में कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस, क्या होता है टावर ऑफ साइलेंस? कई बार बाबा की मुरली में आया टावर ऑफ साइलेंस, कौन कौन जानते हैं टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? मुरली में आता है टावर ऑफ साइलेंस। हाँ तो हमारे एक मित्र थे, मित्र हैं, तो उनकी जो है लौकिक संबंधी का जो है देहांत हुआ था, तो हम भी गए थे, तो मालाबार हिल्स में आपको मिलेगा टावर ऑफ साइलेंस। ये फोटोग्राफ है टावर ऑफ साइलेंस। हिंदुओं में शव को जलाते हैं, मुसलमानों में शव को दफनाते हैं, पारसियों में शव को न जलाते हैं न दफनाते हैं, शव को ऐसे ही इस कुएं में रख देते हैं, और गिद्ध जो है या पक्षी जो है इसको खाते हैं। वे मानते हैं कि गिद्ध क्या करते हैं, शरीर पांच तत्वों का बना है तो क्यों ना प्रकृति के काम में आ जाए, इसलिए शव को जलाते नहीं है। देखिए ये सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है, इसके दरवाजे को खोला जाता है और अंदर शव को रखा जाता है, तो अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं रहता है। जो पारसीज रहते हैं उनको बस गेट तक जा सकते हैं, और उनके जो बताते हैं पंडित होते हैं जिसको दस्तूर जी कहते हैं, वो क्रियाकर्म वगैरह जो है करते हैं। चलिए मैं अंदर के फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, देखना चाहेंगे अंदर के फोटोग्राफ? नहीं, आपको लाशें नहीं दिखाई देंगी, मैं दूर से दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो ये है टावर ऑफ साइलेंस के अंदर का फोटो, ये देखिए ये गेट खुला और ये देखिए ये जो चार लोग हैं आप देख रहे हैं कि चार जो उनके जो भी लोग होते हैं जो क्रियाक्रम करने वाले, व्हाइट ड्रेस पहने रहते हैं और शव को यहां पे रख देते हैं, और सारे पक्षी यहां पे बैठे हुए हैं खाने के लिए शव को। यहां पे सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है, और बाबा इसको कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। तो ये मलाबार हिल्स में ये जो आप पाते हैं बॉम्बे में टावर ऑफ साइलेंस है, कुछ ही दूरी पर जहां पे हैंगिंग गार्डन है, इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में टावर ऑफ साइलेंस की बात करते हैं। ये थी मुरलियों में आने वाली कुछ अनोखी बातें। आगे बढ़ते हैं, ये पारिजात बिल्डिंग जहां नारायण दादा रहा करते थे, बाबा के लौकिक बेटे। बाबा भी बताते हैं कि चार पांच महीना 1955 के आसपास में बॉम्बे रुके थे। ये उस बिल्डिंग के फोटोग्राफ में दिखा रहा हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, बॉम्बे का सबसे पहला सेंटर जहां खुला गया, इसका नाम है वाटरलू मेंशन, और रीगल सिनेमा के सामने आप देख रहे हैं वाटरलू मेंशन है। और ब्रह्मा बाबा इसके सेकेंड मंजिले पे सेकेंड फ्लोर पर मुरली चलाते थे अर्ली मॉर्निंग, कितने बजे? मैंने सब इंटरव्यूज पुराने दादियों से लिए हैं, पहले मुरली मालूम है बाबा कितने बजे चलाते थे? वाटरलू मेंशन में मुरली चलती थी 5:30 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग। चर्च गेट से भी आगे जाना पड़ता है, और डॉक्टर निर्मल शांता, डॉक्टर निर्मला जो है अपनी दीदी जो है निर्मला दीदी है, वो और योगिनी बहन पुराने जो लोग थे तब के, बॉम्बे के पुराने लोग जो बताते हैं, तब से कांदिवली से कांदिवली जहां हमारा जो सेंटर है, हमारा सेवा केंद्र है जहां से हम बिलोंग करते हैं। और मुझे इस बात का बहुत नशा रहता है कि हमारे सेंटर का भी उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है, साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुआ है। तो मुझे उसका बहुत नशा रहता है। तो बाबा के द्वारा उद्घाटन हुआ था वो सेवा केंद्र। तो ये वाटरलू मेंशन की बिल्डिंग है जहां निर्वेर भाई भी जाते थे मॉर्निंग में मुरली क्लास सुनने, और 5:30 बजे बांधेली माता है। कांदिवली से चर्च गेट जाने में कम 1 घंटे लगते हैं, सोचिए रात को कितने बजे घर से निकलते होंगे। तो ये वाटरलू मेंशन के अंदर का मैं सीन दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए वही वाटरलू मेंशन की सीढ़ियां। निर्भय भाई ने भी यहां से ज्ञान उठाया था वाटरलू मेंशन से। तो ये वहां की सीढ़ियां, और अभी तो सब सारी चीजें चेंज हो गई है, अंदर हॉल है जहां पे मुरली चलती थी। तो अंदर के ऐसे फोटोग्राफ्स हमने रेयर फोटोग्राफ्स आपके लिए लाए हैं ताकि आप देख सके अंदर कैसे हैं। अगर आप वाटरलू मेंशन पे खड़े हैं तो नीचे आपको रीगल सिनेमा सामने दिखाई देगा, यहां सड़क जो दिखाई दे रही है वाटरलू मेंशन का नजारा। डेकन बताते हैं, डेकन बिल्डिंग, ठंडी के दिनों में बाबा क्या करते थे, माउंट आबू नहीं रहते थे, 2 से 3 महीने के लिए बॉम्बे चले जाते थे। तो ये डेकन बिल्डिंग है जहां बाबा कई बार रुका करते थे, उस बिल्डिंग के रेयर फोटोग्राफ आपके सामने हैं। गिरगांव चौपाटी जहां पे गणपति विसर्जन होता है बॉम्बे में, और यहां पे रामलीला वगैरह के भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। और गिरगांव चौपाटी के बाद आता है नरीमन पॉइंट, जब भी मुंबई को दिखाया जाता है तो नरीमन पॉइंट दिखाया जाता है। तो रमेश भाई मम्मा को कार में नरीमन पॉइंट के थ्रू क्लास कराने के लिए ले जाते थे, पूरी कार लंबी ड्राइव करके ले जाते थे। मम्मा कहते थे ये इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन रमेश भाई जो है उनको जो मम्मा को इसी नरीमन पॉइंट से जो है कार में ले जाया करते थे। तो उस नरीमन पॉइंट के ये फोटो है जो गिरगांव चौपाटी में स्थित है। ये कौन सी बिल्डिंग है, दारुल मुल्क। और इसी बिल्डिंग में बताते हैं कि दादी प्रकाशमणि ने 5 साल स्पेंड किया बाबा के अव्यक्त होने के पहले, और गुलजार दादी वर्तमान समय इसी बिल्डिंग में ही है, 2nd फ्लोर दारुल मुल्क। तो आप मनसा सेवा करते हैं तो गुलजार दादी को जब हम याद करते हैं तो पहले ये बिल्डिंग ही सामने आती है। ये रहा 2nd फ्लोर जहां पे वर्तमान समय गुलजार दादी हैं, रुकी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि ये किसके फोटोग्राफ हैं? फोटोग्राफ देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के उस समय बताते हैं मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आपको मालूम रहे कि माउंट आबू बाद में पहले गुजरात के बदले किसके अंडर में चला गया, राजस्थान के अंडर में चला गया, और हमको सर्किट हाउस खाली करना पड़ा। तो ये सर्किट हाउस का फोटो है जो वास्तव में पांडव भवन के पास में ही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखा गया, आपने वो कहानी पढ़ी होगी जीवन कहानी में, मैं उसके बारे में विस्तार नहीं करूंगा। तो भाऊ जाते हैं लेटर लेकर आते हैं, तो हमारे ज्ञान में चलने वाले एक भाई थे है ना, हीरालाल जालन, तो वो राजेंद्र प्रसाद के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो हमें 2 महीने के लिए और बताते हैं एक्सटेंड कर दिया गया। ये वही सर्किट हाउस है, अभी वर्तमान समय ये होटल में तब्दील हो चुका है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं सर्किट हाउस के अंदर, फोटोग्राफी देखेंगे, ओनली फोटोग्राफ। सर्किट हाउस के आसपास के कुछ बंगलोस, ये देखिए अंदर का फोटो, सर्किट हाउस के कोटा हाउस के अंदर का फोटो है। 2 बंगलोस हैं, कोटा हाउस सर्किट हाउस, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर वैसे का वैसे ही है, अभी भी वैसे का वैसे ही है। पांडव भवन के पास आप इसे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अंदर रहते हैं, हमें परमिशन मिली थी तो हमने एक फोटोग्राफ निकाले कि सब देख सकें। देखिए बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, अच्छा है, आपको सीढ़ियां दिख रही हैं, यहां पे स्टेप्स दिख रहे हैं, जैसे आप कोटा हाउस से उतर रहे हैं नीचे स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं पुराना फोटो, ये वही कोटा हाउस है, यहां गुलजार दादी आपको दिखाई दे रही हैं, और यहां पे जो है वही सीढ़ियां आप वैसे की बिल्कुल वैसी ही। तो ये है कोटा हाउस। कोटा हाउस और सर्किट हाउस को जो है उसको लिंक करने वाली एक सीढ़ी है, अंदर से बंगलों की तरफ एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी से आप दूसरे बंगले में भी जा सकते हैं, दूसरे से पहले बंगले में भी जा सकते हैं, ये दोनों सीढ़ियां उसको लिंक करती हैं, ये दिखाया गया। सर्किट हाउस के अंदर के फोटोग्राफ जो कि अब एक होटल में तब्दील हो चुका है, चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूं। इसके इर्द गिर्द जो गार्डन है कुछ ऐसा दिखाई देता है, अंदर के फोटोग्राफ अभी के जो कुछ महीने पहले ही खींचे गए हैं। अब उसके टेरेस से आपको ओम शांति भवन यूनिवर्सल पीस हॉल का वो पहाड़ी दिखाई देती है। शायद बाबा ने इतनी मनसा सेवा की होगी इस टेरेस पे, इसलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट लोकेशन क्या था, पोखरण हाउस, जिसे हम पांडव भवन कहते हैं। इसके बाद यज्ञ शिफ्ट होकर कहां आ गया, पांडव भवन। इसको, इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं आप जानते हैं, एरोप्लेन कहते हैं। पांडव भवन में इस बिल्डिंग को एरोप्लेन कहते हैं। ये देखिए एरोप्लेन की ही बिल्डिंग का फोटो है। यहां कौन है, जयंती दीदी बैठी है, जयंती बहन और उनकी रजनी बहन, उनकी लौकिक माता। ये एरोप्लेन की फोटो है, देखिए तब के एरोप्लेन की फोटो, इस बिल्डिंग की फोटो, यहां से ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो आप देख पा रहे हैं। बाबा के हाथ में शायद कैमरा है, बाबा फोटो खींच रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है। तो एरोप्लेन के तब के फोटो और अब के फोटो। यहां पे अक्सर करके जगदीश भाई आते थे तो यहां पे रुका करते थे, क्योंकि इन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लिटरेचर का काम कर सके। ये बाबा की हैंडराइटिंग, बाबा की हैंडराइटिंग रेड अक्षर में है, ब्लू वाली नहीं है। यीशु दादी बाद में लिखती थी उसके ऊपर ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि ये सिंधी में लिखा जाता था। तो बाबा के, देखिए ये नलिनी बहन को लेटर लिखा गया है, बॉम्बे की नलिनी बहन। तो ये लेटर के सैंपल आप देख पा रहे हैं। अच्छा, आप बाबा का सिग्नेचर देखना चाहेंगे, बाबा सिग्नेचर कैसे लिखते थे देखना चाहेंगे। ये रहा बाबा का, बाबा के हैंडराइटिंग में गॉड फादरली वर्ल्ड स्पिरिचुअल, ये बाबा के इंग्लिश के हैंडराइटिंग आप इस समय देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हैंडराइटिंग एनालिसिस से भी व्यक्ति की पर्सनालिटी मालूम पड़ जाती है। जगदीश भाई ने इस पर आर्टिकल भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, कौन सा खेल है ये, चौपट। तो बाबा क्या करते थे, संदेशी दादी जो है, संदेशी दादी और बच्चे जो हैं, बाबा हर चीज का बैलेंस भी रखते थे। तो बच्चों के साथ बाबा गेम्स भी खेलते थे, ऐसे नहीं कि हमेशा तपस्या करनी है, लेकिन हर प्रकार का मनोरंजन भी करते थे। उसके फोटोग्राफ हैं। और ये क्या है, बाबा का खड़ा हूं, जिसकी आवाज सुनते ही मम्मा को मालूम पड़ जाता था कि बाबा आ चुके हैं, मम्मा क्लास टॉप कर देती थी। और बच्चों को भी मालूम पड़ जाता था कि बाबा आ गए हैं। कल भी जो जमुना प्रसाद भाई जो अनुभव सुना रहे थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया और बताते थे, हमने पुराने का इंटरव्यू लिया हुआ है, हिस्ट्री हॉल में घड़ी हुआ करती थी, जापान से मंगाई हुई घड़ी, जिसमें चिड़ियां बाहर आती थी और आवाज करती थी। और बाबा एकदम पंचुअल थे, जैसे ही टाइम हुआ तुरंत बाबा की खड़ाऊ की आवाज से मालूम पड़ जाता है कि बाबा क्लास में आ चुके हैं। तो ये वही बाबा का खड़ाऊ है जो अभी भी हिस्ट्री हॉल में रखा गया है। आप सोच रहे हैं ये क्या है, अब देखिए लास्ट फोटोग्राफ यही है। ये क्या है, ये वह पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ है, जहां बाबा पार्टी को विदाई देते थे। गोसुन कमसुन की जो बातें आप सुनते हैं, आज भी पांडव भवन के गेट के सामने आपको ये पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये था इन शॉर्ट यज्ञ इतिहास के कुछ अनोखी बातें और मुरलियों में आने वाली कुछ अनोखी बातें और कुछ रेयर फोटोग्राफ्स जो शायद बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। इन शॉर्ट में मैंने आपको छोटा सा आपको जो है यज्ञ की कुछ बातें, महत्वपूर्ण पुरानी पुरानी बातें और कराची की बातों से जो है अवगत कराया। ओम शांति। ठीक है, तो अभी हम सत्र यहां पे ही समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे मालूम है काफी लंबे टाइम से बैठे हैं, तो हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे, आप बिल्कुल कुछ मिनट में फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम सत्र वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी खड़े हो जाइए, सारे के सारे जो है भाई बहने खड़े हो जाइए। देखिए अपने आप शांति की अनुभूति हो रही है बिना योग के, खड़े हो जाइए। हाँ, 10 मिनट्स कंसिडर। अच्छा, फिर से हाथ ऊपर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए पहले से हाथ, हाँ, फिर से कौन सी एक्टिविटी थी, यस, अच्छा, हाथ को ऊपर रखेंगे, हाँ, आसमान को छूने की ख्वाहिश, और ऊपर, हाँ, हाथ एकदम धीरे से नीचे करेंगे। अच्छा, आपको मालूम है कि हम सृष्टि चक्र का गोला भी बना सकते हैं, हाँ, क्लॉकवाइज मूव करेंगे एकदम आराम से, हाँ, हाथ एकदम स्ट्रेट, बैंड नहीं होने चाहिए और किसी से टच ना हो। हाँ, उल्टे डायरेक्शन में, अब वापस उल्टा, हाथ नीचे करेंगे, मिलिट्री मार्च, वंस अगेन बहुत अच्छे मिलिट्री मार्चिंग करते हैं आप लोग। मैं सोच रहा हूं आप एक्टिविटी में बहुत इंजॉय करते हैं, तो मैं सोच रहा हूं 3-4 एक्टिविटीज कराऊं। अच्छा ठीक है, हाथ ऊपर फिर से ऊपर ले जाएंगे, राइट हैंड अपने कंधे पे रखेंगे, राइट या लेफ्ट कोई भी एक, हाँ 3 बार इसको क्या कर रहे हैं आप, अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, बहुत अच्छा। नीचे हाथ फिर से, अच्छा हाथ एकदम सीधा, हाथ को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करना है, फिर उसको उल्टा करना है, फिर हल्का सा स्ट्रेच, हाँ वेरी गुड, लेफ्ट और राइट हल्के से एकदम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ अभी सब बैठ जाएंगे, अब मैं आपको कुछ ऐसे सेशन में वाइंड अप कर रहा हूं। फाइन, चलिए अब हम कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी कराते हैं जिससे आप बहुत अच्छी अनुभूतियां करेंगे। तैयार हैं सभी के सभी, हाथ ऊपर करेंगे, यस। हाँ पहले आपके हाथ में जो भी सामान वगैरह बैग वगैरह है उसको नीचे रख दें, बुक्स आप बंद कर सकते हैं क्योंकि हम सत्र यहीं पे भी समाप्त करने वाले हैं, बुक्स बंद कर सकते हैं। अगर चश्मे की आवश्यकता नहीं है तो चश्मा भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको कुछ देखना नहीं है, अगर आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, फिर आपको हेल्प करने के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े। हाँ रिलैक्स बैठे हैं, अच्छा तो अब हम एक काम करने वाले हैं। अभी आपको मालूम है कि शुरू में हमारे यज्ञ का नाम क्या था, ओम मंडली, तो शुरू के दिनों में ओम की ध्वनि कराई जाती थी और कई लोग ट्रांस में चले जाते थे। अब मैं आशा नहीं करता हूं कि यहां लोग ट्रांस में चले जाएं, तो हम ओम की ध्वनि करने वाले हैं, लेकिन कैसे करना है पहले मैं आपको बता देता हूं, आप वैसे ही करेंगे। रेडी हैं? हाँ पहले आप सुनेंगे मैं कैसे करता हूं, वैसे आपको करना है। तो ओम जो है ना 3 चीजों से बना है, अ उ और म। तो ऐसे जब लोग बोलते हैं तो पेट से बोलते हैं, गले से भी बोल सकते हैं, तो इसको कैसे बोलना है इसमें ज्यादा हमें टेक्निकल बातें नहीं करनी है। अगर जब मैं ओम कहूंगा ना तो म को थोड़ा लंबा खींचूंगा, अ ओ और म, म को मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा लंबा एक्सटेंड करने वाला हूं जिससे पूरा जो ये एरिया वाइब्रेट होता है। तो हम 3 से 4 बार आप मेरे साथ ओम ओम बोलेंगे, अपने आप नहीं बोलेंगे, पहले मैं एक डेमो दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। और ओम जब ओम ध्वनि समाप्त होगी आप शांति से आत्मिक अवस्था में बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं कि ओम समाप्त हो गया अब भाई क्या कहने वाला है यहां वहां नहीं देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक बार ओम बोलता हूं, देखेंगे कैसे मैं बोलता हूं, फिर आप ट्राई करेंगे। पहले सांस लेना भी है, ऐसा ना हो कि सांस ही ना रहे, है ना। पहले आप देखेंगे, कुछ करना नहीं है आपको। तो जब हम ओम को एंड करेंगे ना एकदम हल्की आवाज में एंड करना है, जैसे मंदिर में जब घंटी बजती है ना तो लास्ट में आवाज कैसे सुनाई देती है वैसे। और मैं भाई बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा देखिए, हमें पूरी मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे 4 बार आप ओम ध्वनि करेंगे लास्ट में देखिए अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। रेडी है? सच में ऐसा होगा, आंखें बंद रहेंगी, एकदम रिलैक्स्ड, हमारा ध्यान श्वासों की तरफ, पूरा ध्यान श्वासों की तरफ। भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा और मेरा पूरा ध्यान सांसों की तरफ। अब मैं ओम की ध्वनि करने जा रहा हूं, हम साथ में ओम ध्वनि करेंगे और अपनी बुद्धि को एकाग्र करेंगे। Oh. एकदम रिलैक्स्ड, आंखें बंद, साइलेंस का अनुभव। सभी एकदम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, स्लोली, एकदम धीरे धीरे। ओम शांति। अच्छा लगा? अच्छा, इसे भी गहन शांति का अनुभव करना चाहते हैं? अभी जो आपने अनुभव किया, क्या इसे भी गहन शांति का अनुभव करना चाहते हैं? ठीक है, चलिए, लेट तो नहीं हो रहा है ना? रेडी है? ठीक है, चलिए मैं दूसरी एक छोटी एक्टिविटी कराता हूं। मैं समझ रहा हूं कि प्रेजेंटेशन से अच्छा हम कुछ एक्टिविटी करें जिससे हमें कुछ अनुभूति हो, कई लोग मांग कर रहे थे। विल डू सम स्मॉल एक्टिविटीज। अब मैं छोटी सी आपको एक कॉमेंट्री कराने वाला हूं, मुश्किल से कुछ मिनट की, और यह है आत्मिक अवस्था की कॉमेंट्री, जो अक्सर करके हम फर्स्ट डे में कराते हैं। पहले दिन के चैप्टर से ही हम कमेंट्री शुरू करते हैं, ना कि हम छठे दिन या तीसरे दिन। तो ये कमेंट्री आप औरों को भी करा सकते हैं। इस कमेंट्री में इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, थोड़ा समय बता दूं। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है, बार बार हिलाना नहीं है। अगर मेरा शरीर बार बार हिल रहा है, मतलब मेरा मन भी हिल रहा है। शरीर का आत्मा के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, तो बार बार शरीर को हिलाना नहीं है। और ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठने मतलब क्या हुआ, अभी भी मैं कहीं स्ट्रेस में हूं। और योग में बैठना कैसा होता है, ना एकदम स्ट्रेट ना एकदम लूज, सुखासन में बैठना होता है। ऐसे भी कुछ तरीके होते हैं जिससे आप कई घंटे तक भी योग में बैठ सकते हैं, लेकिन हमारा आज का वर्तमान विषय योग के बारे में नहीं है। तो हम छोटी सी एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें आप सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कमेंट्री दूंगा, कमेंट्री क्या दूंगा उसका एक फॉर्मेट बता देता हूं। मैं कहूंगा कि आपके दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, पैर भी रिलैक्स हो रहा है, अब बॉडी के एक एक ऑर्गन्स क्या होते जा रहे हैं, रिलैक्स। और जैसे आप एक एक बॉडी पार्ट्स को छोड़ते जा रहे हो, चेतना क्या कर रही है, उन अंगों को समेट, चेतना को आप समेट रहे हैं। और मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं, मैं आत्मा शरीर के बाहर जाती हूं, परमधाम नहीं जाना है, केवल यहां तक। फिर से मैं आत्मा ब्रकुटी के बीच में आती हूं और फिर मैं कमेंट्री बंद करूंगा। लेकिन जब मैं आत्मा को शरीर के बाहर ले जाऊंगा तो मैं पांच काउंटिंग दूंगा, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे मेरी काउंटिंग बढ़ते जाएगी, 1 के बाद 2 शांति। अब किसका अनुभव करना चाहते हैं, शांति का? शांति का अनुभव कौन सा अनुभव रखें आप बताइए। हम शांति का लेते हैं, कॉमन है, इजी भी है। 1, शांति और बढ़ेगी। 2, आप में जितनी क्षमता हो शांति को महसूस करने का, पूर्णता अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे, आत्मिक अवस्था में टिकेंगे कुछ देर के लिए। लंबी कमेंट्री नहीं होगी, मुश्किल से कुछ मिनट के लिए। रेडी हैं? आमतौर पर राजयोग में हम आंखें खोल करके करते हैं, अभी फिलहाल के लिए आप आंखें भले क्लोज कर सकते हैं, आंखें बंद रखेंगे, जब मैं कहूंगा तभी खोलना है। और बार बार हिलना डुलना नहीं है, मोबाइल आपके स्विच ऑफ होने चाहिए। रेडी है? रेड लाइट करेंगे। आंखें बंद, हमारा पूरा ध्यान श्वासों की तरफ। रेड लाइट करेंगे, कुछ देर के लिए मेरा पूरा ध्यान श्वासों की तरफ। श्वास कौन ले रहा है? शरीर, और इसे देख कौन रहा है? मैं आत्मा, प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा। मेरा मन एकदम शांत होते जा रहा है, एकदम शांत। मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। महसूस करें, मेरे ये दोनों हाथ एकदम रिलैक्स्ड हैं। हाथों की उंगलियां भी एकदम रिलैक्स्ड। मेरे हाथों की उंगलियों से प्रकाश निकल रहा है, दिव्य प्रकाश, और देहभान समाप्त होते जा रहा है। महसूस करें जैसे कि हाथों में उंगलियां जो हैं मेल्ट होती जा रही हैं, वहां किसी प्रकार का भान नहीं है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वहां देहभान है ही नहीं। धीरे धीरे प्रकाश उंगलियों से हाथ के ऊपरी हिस्सों में बढ़ रहा है। प्रकाश उंगलियों से हाथ के ऊपरी हिस्सों में बढ़ रहा है और वो सारे हिस्से सुन्न होते जा रहे हैं, चेतना विहीन, सुन्न। देहभान समाप्त होते जा रहा है। देहभान समाप्त होते जा रहा है। अब मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शरीर में हाथ है ही नहीं, क्योंकि मेरा एग्जिस्टेंस केवल भ्रुकुटी के बीच में है, हाथों में तो है ही नहीं। महसूस करें जैसे दोनों हाथों का अस्तित्व है ही नहीं। मैंने चेतना को समेट लिया है, हाथ एकदम स्थिर, कोई मूवमेंट नहीं। मेरे दोनों पैर एकदम स्थिर और शांत हो चुके हैं, पैरों में कोई हलचल नहीं है। पैरों की उंगलियां भी एकदम स्थिर हैं। महसूस करें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पैरों में उंगलियां हैं ही नहीं, चेतना है ही नहीं। शरीर शरीर में फैले देहभान को मैं आत्मा समेट रही हूं। प्रकाश उंगलियों से भी निकल रहा है। और वो पैर के घुटनों की तरफ बढ़ रहा है और सारे हिस्से सुन्न करते जा रहा है, चेतना विहीन करते जा रहा है। अब यह प्रकाश घुटनों से पैर की ऊपरी हिस्सों में फैल रहा है और सारे हिस्से एक एक करते सुन्न होते जा रहे हैं, एकदम सुन्न। जैसे कि पैरों में जान है ही नहीं, बिल्कुल निर्जीव जड़ बन चुके हैं, क्योंकि मुझ आत्मा ने चेतना को समेट लिया है। महसूस करें जैसे कि शरीर में दोनों पैर है ही नहीं, मेरा अस्तित्व वहां पर है ही नहीं। कमर एकदम रिलैक्स्ड है, कमर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, कमर एकदम रिलैक्स्ड। यह प्रकाश कमर के ऊपरी हिस्सों में भी फैल रहा है और सारे हिस्से सुन्न होते जा रहे हैं। महसूस करें यह प्रकाश रीढ़ की हड्डी से होते हुए कंधों की ओर बढ़ रहा है और सारे हिस्से शून्य होते जा रहे हैं, शून्य चेतना विहीन। कंधे एकदम रिलैक्स्ड। मैं तो आत्मा हूं तो मैंने कंधों को क्यों पकड़ा हुआ है? ये कंधा भी मेरा नहीं है, उसको एकदम रिलैक्स कर रहा हूं। मेरा अस्तित्व कंधों में भी नहीं है, इस कंधों को भी मैंने छोड़ दिया है। अब केवल मैं भ्रुकुटी के बीच में अपनी चेतना को समेट रहा हूं, चमकता हुआ सितारा। मेरा चेहरा एकदम रिलैक्स्ड। एकदम रिलैक्स्ड। और मेरा मन एकदम शांत होते जा रहा है, एकदम शांत। महसूस करें अपने अंदर की सारी शांति को मैं बाहर ला रहा हूं, सारी शांति के गुण बाहर आ रहे हैं। अब मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे शरीर के बाहर आ रहा हूं और लगभग एक फुट की ऊंचाई पर स्थित हो जाता हूं। मुझे पुराना शरीर दिखाई दे रहा है जो कि मैं नहीं हूं, मैं तो चमकता हुआ सितारा हूं। मेरा पूरा ध्यान चमकते हुए सितारे की तरफ है जिसे बहुत सुंदर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। मन एकदम शांत होते जा रहा है, एकदम शांत। शरीर एकदम स्थिर हो चुका है और उससे तो मैं बाहर हो चुकी हूं। अब मैं अपने अंदर की शांति को इमर्ज करने जा रहा हूं। जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी मेरी शांति और भी गहरी होती जाएगी। 1, मेरा मन एकदम शांत हो चुका है, महसूस करें। 2, और भी शांत, अपनी शांति को इमर्ज करें। 3, एकदम सन्नाटा महसूस करें, एकदम सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। 4, डेड साइलेंस, एकदम सन्नाटा। 5, शांति की पराकाष्ठा, एकदम सन्नाटा, जैसे कि ये ब्रह्मांड बना ही नहीं है, केवल मैं चमकता हुआ सितारा। 6, अब मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा फिर से धीरे धीरे नीचे भ्रुकुटी के बीच में प्रवेश करता हूं। 7, मेरा मन एकदम शांत हो चुका है, एकदम शांत। 8, विश्व की आत्माओं को यही शांति के प्रकंपन मिले, ऐसे मेरी दिल से दुआ है। 9, शांति की दुआएं पूरे विश्व को दे रही हूं और मेरा पूरा ध्यान चमकते हुए सितारे पर। 10, बाबा को थैंक यू भी कह रही हूं कि इतनी शांति का अनुभव हो रहा है, एकदम शांत। 11, अब एकदम धीरे धीरे स्लोली, जितना धीरे धीरे खोल सकें एकदम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे स्लोली और उसी अवस्था में टिके रहेंगे। 12, जरा भी हिलेंगे नहीं। ओम शांति।